سورت النحل آیت نمبر 94، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، اور تم جو ہے وہ نہ بناؤ اپنی قسموں کو، دخلن دھوکہ دینا دوسروں کو، مکر اور فریب دینا، تم اپنی قسموں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ، فتزل قدم بعد ثبوتها، کہ کہیں ایسا نہ ہو فتزل کہ پھسل جائیں اکھڑ جائیں قدم بعد ثبوتها جمنے کے بعد، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے، اور جب ایسا ہوگا کہ قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائیں گے وَتَذُوقُ السُّوءَ، اور تم چکھو گے برائی، تم چکھو گے سزا کو، اور سزا تمہیں کیوں ملے گی؟ بِمَا صَدَدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے منع کیا، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور دیکھو تمہارے لیے اس کا بڑا ہی جو ہے وہ عذاب ہے، اس کی بڑی سخت جو ہے وہ سزا ہے۔ اس آیت میں یہودیوں کا وہ ذریعہ بتایا جا رہا ہے جو وہ اختیار کیا کرتے تھے لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے، اور اسلام سے روکنے کے لیے ان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار جس سے وہ کام لیتے تھے وہ ان کی قسمیں تھیں۔ جھوٹے لوگ اول تو کیا کرتے ہیں کہ نفسیاتی کمزوری کی وجہ سے جو ہیں وہ قسمیں کھاتے ہی زیادہ ہیں، ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ دوسرے کو پتا چل جائے گا، قسمیں کھاتے ہی زیادہ ہیں۔ دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ جو ہے وہ کہ کس طرح سے لوگوں کو اسلام اور پیارے رسول کے خلاف کیا جا سکے، تو وہ قسموں کے ذریعے سے ان لوگوں کو ہٹانا چاہتے تھے جو اسلام پر جم جاتے تھے، اسلام قبول کر لیا تو یہ قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم تمہارے زیادہ خیر خواہ ہیں، ہم تو پہلے سے ہی جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور ہمارے پاس کتابیں آسمانی جو آئیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ جو نیا مذہب اور نیا پیغمبر اور یہ جو نئی کتاب ہے نا، اس کا پچھلے نبیوں سے، پچھلی کتابوں سے یا اللہ کی طرف سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کیا کرتے تھے کہ اپنے مذاہب اور اپنے نبیوں کا دعویٰ کر کے اور ان کا ذکر کر کے، ان کا حوالہ دے کے وہ جو مسلمان ہوتے تھے ان کو دین سے روکتے تھے۔ تو اب جو ہے ایک اس کے معنی تو یہ بیان کیے جاتے ہیں ہے نا، کہ جو ہے وہ قسمیں کھا کر لوگوں کو جو ہے وہ دین سے روکا نہ جائے۔ دوسرے معنی یہ ہیں، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دوبارہ عہد شکنی سے روکا جا رہا ہے، مسلمانوں کو روکا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ جو عہد شکنی ہے، تمہارا وعدے پورا نہ کرنا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ دوسروں کے قدم ڈگمگا جائیں۔ دوسرے کون ہیں؟ تزل قدم بعد ثبوتها، کہ جو کافر ہے نا وہ تمہیں دیکھ کر، تمہارا رویہ دیکھ کر، تمہارے کردار کی کمزوری دیکھ کر، ایسا نہ ہو کہ وہ اسلام سے رک جائیں اور یوں تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے مجرم بن جاؤ اور سزا کے مستحق ہو جاؤ۔ تو دوسرے معنی یہ بیان کیے جاتے ہیں کہ خود اپنا مسلمانوں کا عمل ایسا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر دیکھیں کاروبار ہے، بزنس ہے، لین دین ہے، سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں مسلمان، وہاں پہ وہ خیانت کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، رشوت لیتے دیتے ہیں، عہد شکنی کرتے ہیں، تو اب جب ایسا کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک تو مسلمانوں کی ساکھ متاثر ہوگی، دوسرے ذلت اور رسوائی ہوگی، اور وہ لوگ جو مسلمانوں کو مسلمان دیکھتے کہ یہ اتنے اچھے ہیں تو وہ دیکھ کر مسلمان ہوتے نا، اب جب کافر دیکھیں گے مسلمان وہی کچھ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں تو پھر وہ مسلمان کیسے ہوں گے؟ تو اس طرح مسلمانوں کا جو ان کا دو رنگی ہے، ان کا جو کنٹراڈکشن ہے ان کی لائف کا، ان کا جو تضاد ہے، वो लोगों को इस्लाम से दूर कर देगा। वतजूकू सुआ, और तुम चखोगे चखोगे सजा बुराई, बिमा सदत तुम अन सबीलिल्लाह, वो जो तुमने लोगों को अल्लाह के रास्ते से जो है वो रोका है। वलकुम अजाबु नजीम, और तुम्हारे लिए जो है वो बुरा नतीजा है। तो दोनों ही बातें सही हैं कि काफरों का ये रोकना कि भी हम ज्यादा अच्छे हैं, और फिर मुसलमानों का अपने रवैये से लोगों को मुतनफर करना। और इसीलिए इस बात से डर लगता है कि जो वो लोग जो मुसलमान यहाँ पे मौजूद हैं बाहर के ममालिक में, या जो इस्लामिक स्टेट्स हैं, तो इनका बैनुल अक़वामी सतह पर लोगों से जो एग्रीमेंट्स हैं, जो वायदे हैं, उनमें इनका रवैया कैसा है, या मुसलमान जो हैं वो अपने किरदार के लिहाज से, वादे की पाबंदी के लिहाज से, एग्रीमेंट के लिहाज से किस तरह के लोग हैं, तिजारत के लिहाज से किस तरह के हैं। और अगर जो है वो तिजारत के लिहाज से वो झूठे हैं, या वादों को पूरा नहीं करते, या खाम माल देते हैं, दिखाते कुछ हैं करते कुछ हैं, और फिर क्या इनका ये रवैया लोगों को इस्लाम से, मुसलमानों से मुतनफर कर देगा, दूर कर देगा। और जब वो ऐसा करेंगे तो फिर वो उनको सजा मिलेगी। वतुज़ूकुस्सुआ कहा, और साथ ही कहा वलकुम अज़ाबुन नज़ीम, और बड़ा अजाब। और उसकी वजह क्या है? दो गुनाह है तुम्हारे कि तुमने झूठी कस्में खाई, तुमने वादे पूरे नहीं किए, और तुम्हारे इस्लाम के अंदर जो तुम कमी कर रहे हो, जो तुम्हारे बदअमली है तुम्हारी, उसकी वजह से अन सबीलिल्लाह लोग दीन इस्लाम से रोक रहे हैं। तो मुझे और आपको भी इस सोसाइटी के अंदर चलते फिरते, लेते देते, पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, जहां कहीं भी रहते हैं, हमें जरूर अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि मेरे रवैये की वजह से मेरे बच्चे दीन से दूर तो नहीं हो रहे, मेरे रवैये की वजह से मेरे खानदान वाले दीन से दूर तो नहीं हो रहे, मेरे रवैये की वजह से मेरी सोसाइटी में जो लोग बिखरे हुए हैं, मेरे दोस्त रिश्तेदार या गैर मुस्लिम, वो दीन से दूर तो नहीं हो रहे? कि अच्छा, स्टाफ वाले ऐसे होते हैं, गाड़ी वाले ऐसे होते हैं, ये मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले ऐसे होते हैं, ये दर्स देने वाले ऐसे होते हैं। तो इस्लाम का दावा करना और अमल उससे हटकर करना, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी तेरी फितरत में न नूरी है न नारी है। असल में दोनों तरह ही कहना चाहिए कि ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, है ना? तो ना आपकी फितरत में, ना मेरी फितरत में, तो कुछ भी नहीं है। असल चीज क्या है? अमल है। फला तश्तरू बिअहदिल्लाहि समनन कलीला, और तुम अल्लाह के अहद को थोड़े से फायदे के बदले बेच ना डालो। फला तश्तरू, और मत बेचो और मत खरीदो अल्लाह के अहद को, समनन कलीला, थोड़ी कीमत पर। इसका ये नहीं मतलब कि ज्यादा फायदा नजर आए तो फिर अहद को तोड़ सकते हैं, थोड़े फायदे पे नहीं, बल्कि ज्यादा फायदे के लिए तोड़ सकते हैं। मतलब ये है कि जो है वो, ये जो इस्लाम है, ये अल्लाह का जो वादा है, ये जो अल्लाह की बंदगी है, ये इतनी बड़ी दौलत है, ये इतनी बड़ी नेमत है कि छोटी सी इवज, हत्ता कि पूरी दुनिया भी बदले में मिल जाए, तो उसके बदले में इसको जो है ना वो तोड़ना नहीं चाहिए, इसको जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए। इन्नमा इंदल्लाहि हुवा खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, जो कुछ अल्लाह के पास है वो ज्यादा बेहतर है अगर तुम जानो, और जो कुछ तुम्हारे पास है वो खर्च हो जाने वाला है। अब कितनी खूबसूरत बात है, ईमान लाएंगे, अमले सवाले करेंगे, तो अल्लाह ताला के पास जो कुछ हमें मिलेगा, अल्लाह की रजा, अल्लाह की जन्नत, अल्लाह की नेमतें, और दीन इस्लाम पर अमल करने के नतीजे में जो हमें सुख और चैन दुनिया में नसीब होगा, अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे पास जो कुछ है वो ज्यादा है। तो अल्लाह के पास क्या है? दुनिया के लिहाज से दीन इस्लाम, और आखरत के लिहाज से जन्नतुल फिरदौस। लेकिन साथ ही कहा इन कुंतुम तालमून, काश के तुम जानो, शायद के तुम जानो, अगर तुम जानो। शर्त है, हर्फ हर्फ शर्त है इन। अगर हमें इस बात का एहसास हो तो हमें पता चले कि दीन और इस्लाम कितनी बड़ी नेमत है। मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक, जो कुछ तुम्हारे पास है वो खर्च हो जाने वाला है। यनफदु, वो खर्च हो जाने वाला है। व मा इंदल्लाहि, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो क्या है? बाक, बाकी रहने वाला है। अब आप देखें कि यहां पे जो है वो जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यनफदु है, नून फा दाल जो है ये खत्म होने के लिए आता है, और खत्म के लिए कुरान में हमें दो लफ्ज मिलते हैं, एक ये नफादा का और दूसरा खा तामीम। नफादा का मतलब ये होता है कि किसी चीज का खत्म होकर बाकी ना रहना, फना हो जाना। इसकी जिद है बकिया, ये जो बाक है ना इसका रूट वर्ड था बा काफ या बकिया, तो या गिर चुकी है और इसलिए जो है ये बाक आया। तो क्या कहा जा रहा है कि जो कुछ भी दुनिया में हमारे पास है ना, माल है, दौलत है, इज्जत है और डिग्रियां हैं, कुर्सी है, इकतदार है, घर, कार, कोठी, बंगला, जेवरात, मलबूसात, रहन-सहन, जो कुछ भी दुनिया में है, औलाद है, जो कुछ भी है, हम खुद हैं, सब चीजें खत्म हो जाने वाली है। मा इंदकुम यनफदु, जो कुछ तुम्हारे पास है सब खत्म हो जाएगा। ममा इंद अल्लाह बाक, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है। तो अब आप देखें कि दूसरा लफ्ज जो खत्म है उसके माने भी आपको आते ही हैं, कि खत्म के माने क्या होते हैं कि कोई चीज मुकम्मल हो जाए तो उसको बंद कर दिया जाए, है ना। मसलन आपने किसी बोतल के अंदर कोई चीज डाली फिर उसको आप सील्ड कर दें, खातमुन नबीयीन, नबुवत पर मोहर लगा देने वाले, है ना। तो इसके मानी होते हैं, खत्म के मानी होते हैं कि आखर उल अमर, खत्म उल अमल, किसी चीज का खत्म होना, उसमें कोई कमी बेशी ना होना। मसलन आपने किताब खत्म की, आप क्या कहती हैं, खत्म अल किताब, किताब मैंने मुकम्मल पढ़ ली है। तो ये एक मानी है खत्म के चीज बहाल रहती है लेकिन आप उसको एक दफा आपने पढ़ लिया है, मुकम्मल कर लिया है, कमी बेशी अब नहीं हो सकती। और दूसरा जो नफादा है उसमें क्या है कि चीज खत्म होकर बाकी नहीं रहती, बिल्कुल ही फिर खत्म हो जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमाते हैं इसके बाद कि अल्लाह के पास जो कुछ है वो बाकी रहने वाला है। तो अल्लाह के पास क्या है कि दीन इस्लाम जो दुनिया में हमें मिला, इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम, ये बेहतरीन दीन है, इससे हम अमल करेंगे ये हमेशा बाकी रहेगा। इसकी जड़ें जमीन में दूर तक फैली हुई, इसकी शाखें आसमान तक, आसमान की बुलंदियों तक, दुनिया में भी जो है वो हुस्ने अखलाक, हुस्ने किरदार के इस पर फल फूल लगते हैं, और समरात के लिहाज से आखरत में भी अल्लाह इसकी बहुत अच्छी जगह देने वाला है, बाकी रहने वाला है। वला नजियन अल्लजीन सबरू अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और हम जरूर ब जरूर उनको जजा देंगे। वला नजियन, हम जरूर ब जरूर उनको बदला देंगे, अल्लजीन उन लोगों को, सबरू जिन्होंने सबर किया, अजरहुम उनके अजर का, के जो भी उनके उन्होंने अमल किए, जो उन्होंने सबर किया, हम उनके सबर का उनको जरूर ब जरूर जो है वो अजर अता करेंगे। भी आसानी जो उन्होंने अमल किए थे उस बेहतरीन, यानी उनका अजर उनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक होगा। हुसन से है, नीयत भी उनकी अच्छी थी, अमल भी उनके अच्छे थे, जाहिर भी उनका अच्छा था, बातिन भी उनका अच्छा था, बातें अच्छी करते थे, अमल भी अच्छा करते थे, है ना, दिल भी अच्छा था, दिल में दूसरों के लिए मोहब्बत। आप देखें जिस दिल में दूसरों के लिए मोहब्बत होती है कितनी खूबसूरत होती है। आपको वो कोई बड़ा तोहफा ना दे, आपको वो कोई आपकी बहुत बड़ी खिदमत ना कर सके, लेकिन उसके दिल की मोहब्बत उसके जाहिर से जो है ना वो छलकती है, टपकती है। आप किसी घर मेहमान जाते हैं, उसके घर कुछ पका हुआ नहीं है, कुछ फ्रीजर में भी नहीं है, इत्तफाक है, चीजें मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी बेचैनी, उसकी मोहब्बत, उसका अंदाज जो है वो टूट कर जो उसकी मोहब्बत का अंदाज है वो बताता है कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करता है, वो आपकी क्या करना चाहता है आपके लिए, है ना। तो दिल के अंदर जो कुछ होता है ना वही बाहर आता है, और बाज़ का दिल में नफरत होती है। आप तोहफे भी देते हैं, आप मिलते जुलते भी हैं, लेकिन ये कि दिल की नफरत जो है उससे बाहर का अमल खूबसूरत नहीं हो सकता। तो जरूरत है अंदर अच्छा हो और बाहर अच्छा हो, जिलबाब के अंदर भी हम अच्छे हों और बाहर भी अच्छे हों। ये कहां से मतलब ले लिया हमने कि जिलबाब पहनने का मतलब यह कि अंदर से जैसे हों, कंघी भी ना करें और कपड़े भी ना तब्दील करें, है ना, ये कैसे मतलब हो गया। इसीलिए जो है वो एक दफा एक औरत कह रही थी कि रिश्ता करना है तो खानदान को देखना चाहिए, माँ बाप को देखना चाहिए, माँ बाप की आदतें अतवार कैसे हैं, तौर तरीके कैसे हैं, है ना। तो असल में माँ बाप की तरबियत, उनका हुस्ने सलूक, उनकी मोहब्बतें, उनकी नरमी, वो बच्चों की शख्सियत और किरदार का हिस्सा बन जाती है। एक घर में एक बहू बनकर आई तो उसने ससुराल में आकर देखा कि सुबह से शाम तक चूल्हा जलता रहता है। कहने लगी, ये अजीब आपके घर का रिवाज है कि जो है वो जो मेहमान आता है पहले आप उसको जो है वो पानी पूछते हैं, फिर खाना देते हैं, फिर आप उसको जो है वो चाय पिलाते हैं। तो जब खाने का टाइम हो तो खाना पूछना चाहिए, बाकी टाइम तो खाना पूछना नहीं चाहिए। तो ये तो भी सारा दिन जो है बस इसी पे लगे रहे, है ना। एक ये किरदार है। एक औरत जो थी उसका ये किरदार था, बहुत खिदमत है, खिदमत, और यानी सास की भी तो बहू की भी और बेटों की भी बच्चों की भी सबकी। तो उसने कहा मैंने अपनी माँ को ऐसे ही करते देखा कि मेहमानों को पूछना भी है, बुजुर्गों की खिदमत करनी भी है, और मेरी वालदा पूरे खानदान में उसकी नंदे भी उससे, मेरी फुफियां भी उससे बहुत मोहब्बत करती थी, मेरा वालिद भी उसकी बहुत इज्जत करता था। और कहती है कि मेरी गुट्टी में ये चीज रच बस गई है कि मैं जो है ये करूं, इसलिए कि मैंने अपने माँ बाप को ऐसे करते देखा और घर में बहुत मुझे इससे सुकून और चैन नजर आता है। तो आप देखें कि जरूर ये देखना चाहिए कि जैसे वो है ना कि चंद चावल चख लेते हैं पूरी देग खाने से पहले, उसका सौदा करने से पहले, आप कपड़े को हाथ लगा के देखते हैं ना, तो एक चीज की बजाय बहुत सी चीजें जो है उसको देखना पड़ता है ना। तो असल बात क्या है, हुसन, हुसन के साथ अजरहुम बे आहसानी। आप देखें यहाँ पे फिर एक ख्वाहिश शफवी है ना, मीम साकिन के बाद बा आ गया, अजरहुम बे आहसानी मा कानू यामल, उनके दुनिया में वो जो बेहतरीन अमल करते रहे अल्लाह जरूर उनको उनके सबर का बदला जो है वो देगा। और यहाँ पे गोया के ईमान और सबर जो है वो इंसानी जिंदगी के वो बेहतरीन जो है वो बुनियादे हैं, वो बेहतरीन अमल हैं, कि इससे ही जो है वो पता चलता है कि मुस्लिम और काफिर का फर्क क्या है, और बेसब्रे लोग कौन से होते हैं और सबर वाले कौन से होते हैं, सच्चे कौन से होते हैं और झूठे कौन से होते हैं। सबर, मुसलमान की पूरी जिंदगी सबर की जिंदगी है। मैं आपके सामने एक बड़ा ही खूबसूरत वाकया रखना चाहती हूँ और अपने सामने भी, और ये वाकया मुझे बड़ा ही पसंद है। उम्र फारूक रजी अल्लाह अन्हु का दौर दौरा था और वो जमाना फतुहात का जमाना कहलाता है, और मुसलमानों की फतुहात जो है वो शाम तक जा पहुंची, और रूम में मुस्लिम दुश्मनी जुनून की हद तक पहुंच गई। और वो रूमी क्या करते थे, जंगी कैदियों को भी निहायत बेदर्दी के साथ ना शहीद करते थे। अरब मौरखी ने यहां तक लिखा है कि रूमियों ने ना तांबे की एक बहुत बड़ी गाय बनाई हुई थी, इसके पेट में यानी गाय की, गाय जो बनी थी वो तांबे की थी, और उसके पेट जो था ना उसमें रोगने जैतून दाल से भरा हुआ था, और नीचे ना वो आग जलाते रहते थे, मुस्तकिल नीचे उसके आग जलती रहती थी, और गाय के पेट में तांबे की जो बनाई हुई गाय थी उसके अंदर जैतून भरा हुआ होता था। अगर मुसलमान कैदी ईसाइत कबूल कर ले तो छोड़ देते थे, और अगर वो दीन ना छोड़े तो उसे खौलते हुए तेल में डालते थे, और बाकी कैदी जो थे ना उनको दिखाते थे कि देखो अगर तुमने दीन इस्लाम को ना छोड़ा और तुमने ईसाइत को कबूल ना किया, यानी ईसाइत कबूल कर लो, तो वरना तुम्हारा हशर भी वो होगा जो तुम्हारे साथी का हुआ है। कहते हैं एक दफा हुआ ये कि शाम की में एक जंग हुई और उसमें 80 या 81 मुजाहिदीन रूमियों के हाथों कैदी बन गए। इन के मुसलमान कैदियों में एक कवियुल जुस्सा, कवियुल जुस्सा के क्या मानी है, मजबूत जिस्म वाले, लंबा चौड़ा मजबूत जिस्म वाले एक सहाबी भी थे साहिबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनकी पेशानी बड़ी चमक रही थी, चेहरे पर अजीब किस्म का जलाल था, और शामी लश्कर में खुद शाहे रूम भी मौजूद था। अब रूमी इन सबको इन साहेब को पकड़कर बादशाह के पास ले गए, वो 80 81 लोग पकड़े गए हैं, इनमें से इनको पकड़कर ना बादशाह के पास, रूमी बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने उसको ईसाई मजहब कबूल करने की दावत दी लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बादशाह ने इनसे कहा अपने अंजाम पर अच्छी तरह सोच लो, अगर तुम इनकार पर कायम रहे तो तुम्हें खौलते हुए तेल में डाल दिया जाएगा। इन्होंने बेधड़क जवाब दिया कि खा कुछ भी कर लो मैं अपना दीन नहीं छोड़ूंगा। अब रूमियों ने क्या किया, इनको खौफजदा करने के लिए एक और मुसलमान कैदी को बादशाह के सामने लाए, इसने इस कैदी को भी इस्लाम को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन इस बंदा हक ने जो है वो साफ इनकार किया कि इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। इस पर रूमियों ने क्या किया, जालिम तो थे ही, खौलते हुए तेल में उसको डाल दिया, मुसलमान कैदी को। वो आनन फानन जल भून कर कबाब हो गया। अब वो साहिबे रसूल जो थे अपने मजलूम साथी का अंजाम देखकर रोने लगे। अब उसको देखा ना इस तरह से जलते हुए, तो रोने लगे। रूमियों ने कहा, अच्छा अब मौत से डरकर रोते क्यों हो, अभी भी वक्त है, शायद कबूल कर लो, हम तुम्हें रिहा कर देंगे। रूमियों की ये बात सुनकर उन साहिबे रसूल की आंखों में एक नूरानी चमक पैदा हुई। उन्होंने बड़े पुरजलाल लहजे में फरमाया, मैं मौत से डरकर नहीं रोता, बल्कि इस बात पर रोता हूं कि अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक जान है। काश एक जान के बजाय मेरे हर बाल की जगह एक जान होती और मैं इन सब जानों को राह हक पे निसार कर देता। रूमी इनकी ये कुव्वत ईमानी देखकर हैरान रह गए, और ऐसे पुख्ता वाले, यानी इतना पुख्ता ईमान है इस शख्स का, तो अब और बेताब हो गए कि किस तरह इसको ईसाइत जो है इसमें दाखिल करें। अब उन्होंने जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन सहाबी से कहा कि अगर तुम हमारे बादशाह की पेशानी पर बोसा दे दो, हमारा बादशाह जो है इसकी पेशानी को चूम लो, तो हम तुम्हें रिहा कर देंगे। अब जो है उन्होंने सलीब परस्त बादशाह की पेशानी चूमने से भी साफ इनकार कर दिया। ये बादशाह वो है जो सलीब जो है ना उसको उसको उसकी पूजा करता है, तीन खुदाओं की ना। अब रूमियों ने उन्हें मालो दौलत का और खूबसूरत हसीन औरतों का लालच दिया, उन्होंने हर तरगीब को ठुकरा दिया। आखिर कैसरे रूम ने कहा, मेरी पेशानी चूम लो तो तुम्हारे तमाम मुसलमान कैदी जो है वो छोड़ दिए जाएंगे। अब वो सहाबी उठे और फौरन आगे बढ़े और बादशाह की पेशानी को चूम लिया। इस तरह 80 कीमती मुसलमानों की जानें जो थी वो बच गई। जब ये साहेब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए और उमर फारूक रजी अल्लाह नो को, अमीरुल मोमिनीन को उनका ये वाकया सुनाया गया, तो उन्होंने खुशी से मसरत से झूम कर इनकी पेशानी को चूम लिया और दूसरे मुसलमानों को भी कहा कि सारे मुसलमान इनके सर को बोसा दें, कि इनके अज़्म इस्तक़लाल, इनके इखलास, इनके इसार और इनकी हिकमत की वजह से 80-81 मुसलमान जो हैं वो उनकी कीमती जानें बच गईं। और आप जानती हैं वो कौन थे, हजरत अब्दुल्ला बिन हुजाफा शामी रजी अल्लाह अन्हो। ये हजरत अब्दुल्ला बिन हुजाफा और ये थे अबू हुजैफा। और आप देख लीजिए कि कितना खूबसूरत इनका किरदार था ना, कितना खूबसूरत इनका ईमान था, कितना मजबूत इनका ईमान था। तो ये सहाबी जो हैं इनके एक अमल से मुसलमानों को कितना फायदा हुआ, यानी उन्होंने वैसे तो इनकार किया लेकिन चूमा तो क्यों चूमा, इस्लाम की खातिर, इस्लाम ही की खातिर चूमने से इनकार किया और इस्लाम की खातिर फिर उसको चूम लिया, है ना, सिर्फ पेशानी को चूमा ना। तो इससे क्या बात पता चलती है कि अपनी अपने लिए नहीं जीते, अल्लाह के लिए जीते हैं। इससे क्या बात पता चलती है कि मुसलमान ईमान और सब्र का नाम है और बेहतरीन अमल करने का नाम है। और मेरी और आपकी जिंदगी जो है ना, पूरी की पूरी जिंदगी सब्र की जिंदगी है। मा कानू या मलून, कि जो कुछ भी हम करें भी आसन अच्छे तरीके से करें, अच्छे एक तरीके से करें, खूबसूरती से करें, प्यार से करें। नमाज पढ़ रहे हैं तो एहसान के दर्जे की नमाज, अंता अबुदल्लाह कान का तरा फइल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। कोशिश ये हो कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, ये नहीं तो कम अज कम ये तो हो जो एहसान का कमतर दर्जा है कि अल्लाह मेरे अमलों को देख रहा है। फिर फरमाया, मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन अव उन्सा वह हुवा मोमिनुन, जिसने अमले सवाले किया मिन ज़करिन वो मर्द हो अव उन्सा या फिर औरत, वह हुवा मोमिनुन और हो वो मोमिन, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उसे दुनिया में जरूर ब जरूर पाकीजा जिंदगी जो है वो बसर कराएंगे, फलनजयिन्नहुम और हम जरूर ब जरूर उनको बदला देंगे, अजरहुम उनके उनका अजर उनके अमल का, बे आसानी जो बेहतरीन अमल, मा कानू या मलून जो दुनिया में किया करते थे, कि आखिरत में ऐसे लोगों को इनके अजर के बेहतरीन जो है हम जजा देंगे, तो वो बेहतरीन जजा उनके अमाल के मुताबिक उनको जो है वो अता की जाएगी। अब आप देखिए ये आयत बड़ी ही खूबसूरत आयत है। पीछे आपने पढ़ा था ना कि कुछ लोगों का रवैया ये है कि जब उनके पास लड़कियां पैदा होती हैं तो लड़कियों की पैदाइश पर उनका चेहरा जो है वो स्याह हो जाता है ना। वैसा बुशीरा अहदुहुम बिल उनसा जल्ला वजहु मुस्वद्दा हुआ हुआ कजीम यतवारा मिन अल कौमी मिन सू इन मा बुशीरा बे, है ना। सूरत नहल आयत 58-59 में आप ये बात पढ़ी चुकी कि औरतों को अरब सोसाइटी ने कोई मकाम नहीं दिया था। तो क्या बात बताई जा रही है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बात का ऐलान कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये बात बता रहे हैं कि असल बात यह है कि अल्लाह ताला को मोमिनाना किरदार चाहिए, ईमान चाहिए और अमले स्वाले चाहिए, है ना। दो खास बातें कहीं, पहली क्या है, मन अमिला स्वालेहन, अमले स्वाले अमल अच्छे होने चाहिए। अगर सिर्फ अमले स्वाले होते तो काफिर तो सारे ही बड़े अच्छे अमल करते हैं, ज्यादातर बहुत से काफिर जो हैं बहुत अच्छे काम करते हैं। तो सिर्फ अमले स्वाले जो थी ये शर्त शक पैदा कर देती, साथ ही क्या कह दिया, वाह हुआ मोमिनुन, और हो वो मोमिन। इसको भी आप सर्कल कर ले कि अमले स्वाले के साथ दूसरी चीज जो जरूरी है वो क्या है कि ईमान। और अमले स्वाले की तारीफ क्या है, नंबर एक अल्लाह के लिए हो, नियत में इखलास होना चाहिए। नंबर दो सुन्नत के मुताबिक हो, सुन्नत के मुताबिक हो, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अब आजकल जैसे रबीउल अव्वल है तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो ईद मनाने लगे, ईद मिलादुन नबी। इसका मतलब क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की ईद। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना आए तो क्या कहा था कि मैंने जो है हमें अल्लाह ताला ने दो ईदें दी हैं, एक ईद उल फित्र और एक ईद उल जुहा, बस मुसलमानों तुम इस दिन को, इन दिनों को खुशियों का दिन बनाओ ना। अगर तीसरी ईद जायज होती तो सहाबा फिर ईद मनाते ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की, और आपकी जिंदगी में मनानी शुरू कर दी जाती। आपकी जिंदगी में हमें कोई एक वाकया भी नहीं मिलता कि वो खुशी मनाई गई हो ना। तो असल बात क्या है कि जो अमल कर रहे हैं वो बजाहिर कितना ही खूबसूरत और अच्छा क्यों नहीं लग रहा, कुरान के मुताबिक होना चाहिए रब की रजा के लिए, और दूसरी बात क्या, सुन्नत के मुताबिक हो। सालेहन, सालेह हो, सुन्नत के मुताबिक हो, ठीक हो। तो अल्लाह ताला कहते हैं वो मर्द करे या औरत करे, अल्लाह को इसकी कोई परवाह नहीं कि मर्द करे तो उसको तो जन्नत मिलेगी और औरत को नहीं मिलेगी। तो यहां पर जो है एक बड़ी अहम हकीकत जो है उसे पर्दा उठाया गया है और ये बात बताई गई है कि ऐसा नहीं है कि औरत होने की वजह से उसको अजर जो है वो कम मिलेगा, क्योंकि औरत है ना। ऐसा नहीं है कि अमलों का मकाम अगर औरतें करें तो अल्लाह के पास जो है वो कम है। तो असल में जो बात याद रखनी है, इस आयत से हमें तीन बातें पता चलती हैं। पहली बात तो ये पता चलती है कि मर्द को जो फौकियत है ना वो वर्क प्लेस की के लिहाज से है। वर्क प्लेस क्या है, तकसीम कार के कामों की तकसीम के लिहाज से मर्द को इस दुनिया में औरत पर फौकियत हासिल है। उखरवी अजर के लिहाज से दोनों का मर्तबा एक जैसा है। वहां मयार क्या है, ईमान और अमले सवाले। अगर इस मयार के मुताबिक औरत मर्द से ज्यादा अच्छा अमल करती है तो यकीनन उसे मर्दों से बेहतर दर्जा मिल सकता है। फिरौन के घर में रहकर बीबी आसिया को जो है वो जन्नत की औरतों की सरदार बन गई, है ना। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को अल्लाह ताला ने सलाम भेजा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सलाम भेजा, वो एक औरत थी। बीबी हाजरा के कदमों के निशानों पर सारे मर्द जो हैं वो भी सही करते हैं, है ना। मर्द का भी हज और उमरा मुकम्मल नहीं होता पूरी दुनिया के मर्दों का जब तक के वो जो है वो बीबी हाजरा के कदमों पर चलते हुए जो है वो सही नहीं करते। तो असल बात क्या है कि अमल कैसे हैं, नेकियां कैसी हैं। तो इस पर नाराज नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो है वो मर्दों को फौकियत दी है, तो वो सिर्फ काम के लिहाज से है कि बाहर के काम मर्दों के हैं, इस लिहाज से अल्लाह ताला ने मर्द को मजबूत बनाया है और औरत नाजुक है, कमजोर है इस लिहाज से। और इसका ये मतलब नहीं है कि औरतें रोएं कि हमें हकूक नहीं मिल रहे, बल्कि औरत को ज्यादा हकूक मिले हैं। ये तहफुज है औरत का कि बाहर जाके काम नहीं करना, सड़कों पर रोड़ा नहीं कूटना, गाड़ियों को खींचना नहीं है, ट्रेनें और बसें चलानी नहीं है, ये मर्दों का काम है। और औरतों का काम क्या है कि वो तो नाजुक आबगीने हैं, गोया कि वो मोती हैं, गोया कि वो घर की मलका है। मर्द कमा के लाता है और फिर उसको देता है कि लो भी अब घर को चलाओ। तो हुकूमत किसकी हुई फिर, है ना? औरत की हुई ना, इस लिहाज से कि पैसे सारे उसके पास आ जाते हैं कि बच्चों पर, घर पर वो सलीके से खर्च करे। और अगर औरतें खर्च अच्छे से ना करें तो फिर मर्द अपने हाथ में सारा लेगा ही ना, क्या करे बेचारा। तो हिकमत देखें दीन की। तो ये पहली बात है कि तकसीमे कार की बिना पर मर्द को औरत पर फकीयत हासिल है कामों की तकसीम के लिहाज से, लेकिन अखरवी उखरवी अजर के लिहाज से दोनों का मर्तबा एक जैसा है, अमलों के लिहाज से है। आपने उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ना के भी कदमों की आवाज जन्नत में सुनी जब आप मेराज पर गए हुए थे ना, तो आपने पूछा ये किसके कदमों की आवाज है। तो वो सहाबियां थी जिन्होंने, उम्मे सुलैम, मैंने आपका सारा वाक्य आपको पहले सुना चुकी हूँ। अच्छा, दूसरी बात इस आयत से ये पता चलती है, ईमान और अमले सवाले इख्तियार करने से इंसान को क्या मिलेगा। मन अमिला सवालहन वह हुआ मोमिनुन, यानी अमले सवाले किए, ईमान भी उसके पास था, मर्द है या औरत, तो अमले सवाले के नतीजे में, ईमान और अमले सवाले के नतीजे में मर्द हो या औरत, उसको क्या मिलेगा। फला नो ही हयातन तय्यिबा। दूसरी बात ये पता चलती है कि अल्लाह ताला उसको जो है दुनिया की जिंदगी में भी जो है वो बेहतरीन पाकीजा जिंदगी जो है वो अता करेंगे, कि मोमिन की दुनिया संवर जाती है, ईमान और अमले सवाले से दुनिया संवर संवर जाती है। दुनिया में ये जो हयातुन तय्यबा है, इससे क्या मुराद है, बेहतर जिंदगी। अब आप देखें कि वो मोमिन जो बाकिरदार है, अल्लाह की बंदगी करता है, कनात करता है, सबर करता है, और इसके अलावा वो सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता, वादों को तोड़ता नहीं है, दुनिया में उसको कितनी सच्ची इज्जत मिलती है, कितना उसको कल्बी सुकून मिलता है, घर में भी इज्जत, सोसाइटी में भी इज्जत। और जो झूठे लोग होते हैं, जो नियत के खोटे होते हैं, फ्रेबकार, अहद चिकन, चीटिंग करने वाले, धोखा देने वाले, उनको तो कभी भी सुकून जो है वो हासिल नहीं होता ना। तो जो नेक लोग होते हैं दुनिया में भी वो जो है वो फायदा उठाते हैं। ये है हयातुन तय्यबा का मकसद। तय्यब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले मक्का उनके इखलाक और किरदार की वजह से अमीन और सादिक के नाम से पुकारते थे ना। और आज आप देखें कि जो हमारे मुसलमानों में आज भी अच्छे लोग हैं, दूसरे लोग भी उनकी तारीफ करते हैं उनके किरदार की वजह से। तो ये है कि दुनिया में भी उनको इज्जत मिलती है, दुनिया में भी उनको जो है वो सुकून मिलता है। और तीसरी बात इस आयत से क्या पता चलती है, वला नजियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, कि आखिरत में अल्लाह ऐसे लोगों को इनके अजर का बेहतरीन बदला देंगे, कि ईमानदार और नेक तो कार लोगों को आखिरत में जो अजर मिलेगा वो उनके बेहतर अमाल के लिहाज से मिलेगा। मसलन एक शख्स ने अपनी जिंदगी में छोटी छोटी और बड़ी बड़ी हर तरह की नेकियां की हैं, तो उसे वो ऊंचा मकाम दिया जाएगा जिसका वो अपनी बड़ी से बड़ी नेकी के लिहाज से मुस्तहिक होगा। अब ये नहीं होगा कि छोटी नेकी के लिहाज से बस जन्नत में एक जगह दे दी जाए, छोटी छोटी नेकियों को भी देखा जाएगा और बड़ी बड़ी नेकियों को भी, और बहुत ऊंचा मर्तबा उसको दिया जाएगा, और वो मर्तबा होगा जो उसकी बड़ी नेकी के लिहाज से होगा। तो ये है कि अल्लाह ताला बहुत नवाजते हैं। अब इसके बाद जो है बताया जा रहा है कि जब ईमान और अमले सवाले तुम करना चाहते हो और मोमिनाना जिंदगी बसर करना चाहते हो, तो ये मोमिनाना जिंदगी पता कहां से चलती है, ईमान की हलावत कहां से मिलती है, ईमान ईमान की हकीकत का मंबा क्या है। फाइजा करातल कुरान फस्त इज बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। ये आपने पहले दिन जो लेक्चर पढ़ा था ना, उसमें आपने ये आयत पढ़ी थी, सूरत अन्नहल आयत नंबर 98, के कुरान की तिलावत के वक्त औजु बिल्ला क्यों पढ़े, याद है आपको। तो उस वक्त ये बात पढ़ी थी, अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि फैजा करात अल कुरान, कि जब तुम कुरान की तिलावत करने लगो, जब तुम कुरान को पढ़ने लगो, क्या करो, फस्तईज, तो पनाह मांग लिया करो बिल्लाही अल्लाह की, मिनश्शैतानिर रजीम, शैतान रजीम से अल्लाह की पनाह में आ जाया करो। उसके क्या मानी है? इतना ही काफी नहीं है कि हम जबान से औजु बिल्ला जो है वो कह दें और जिसको तावुज कहते हैं, बल्कि अमलन भी ये कोशिश होनी चाहिए कि जब हम कुरान पढ़ रहे हैं तो शैतान के जो गुमराह कुन वसवसे हैं उनसे हम महफूज रहें, हमें खाम खास शक और शुबा उसमें हम मुब्तिला ना हो। हर जिंदगी के कानून को, हर जिंदगी के तौर तरीके को कुरान की रोशनी में देखें। औज़ु बिल्लाह पढ़ने का मकसद ये है, पढ़ें औज़ु बिल्लाह और कहें ये कि प्यारे रसूल तो जिंदा हैं और तशरीफ लाते हैं, वो नूर हैं। तो इसका ये मतलब है कि हम जो हैं वो कुरान की आयात को अपने मनमाने मानी जो है वो पहना रहे हैं ना, अपने तखयुलात जो है उसकी अमेजिश कर रहे हैं। ये अल्लाह ताला के मंशा के खिलाफ है। तो करना क्या चाहिए कि जब कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान को समझ रहे हैं, तो कुरान को कुरान की जबान में समझे, नबी की सीरत से समझे, अहदीस से समझे, सहाबा की जिंदगी से समझे, है ना। और सहाबा कौन थे? वो तो रोशनी के सितारे थे, रोशनी के सितारे थे। तो आप देखें कि किसी एक सहाबी की जिंदगी से ये वाकया नहीं मिलता कि उन्होंने ईद मिलादुन्नबी मनाई। और अगर आपकी पैदाइश की खुशी मनाई तो किसने मनाई? किसने मनाई? अबू लहब ने मनाई। अबू लहब रसूल अल्लाह का चचा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो ये चचा अबू लहब मक्का की गली में बैठा हुआ था। एक लौंडी ने आकर कहा कि ऐ सरदार, तेरे मरहूम भाई के घर जो है वो बेटा पैदा हुआ है। तो अबू लहब ने कहा कि तूने मुझे इतना खुश किया है, इतना खुश किया कि मैं मक्का की गली में बाहर बैठा हूं, मेरे पास कुछ नहीं इस वक्त, जा मैंने तुझे आजाद किया, तूने ये मुझे खबर सुनाई कि मेरे मरहूम भाई के घर बेटा पैदा हुआ, तो जा मैंने तुझे आजाद किया, घर जाऊं तो कुछ दू ना, मैंने तुझे यही आजाद कर दिया, तू आज से आजाद है। और लोगों अगर जन्नत मिलती और रसूल अल्लाह की पैदाइश की खुशी मनाने में मिलती तो अबू लहब को मिलती। लेकिन अबू लहब के बारे में क्या आयतें नाजिल हो गई? तब्बत यदा अबी लहब व तब, मा अग्ना अन्हु मालहु व मा कसब। ये वो नगरी है, ये वो दाता है, ये वो दरबार है, ये वो बाजार है, ये वो मंडी है जहां पे दौलत नहीं देखी जाती, जहां पे हुसन नहीं देखा जाता। दौलत और हुसन के लिहाज से अबू लहब बेमिसाल था, बेमिसाल था। लेकिन उसका अंजाम क्या बताया कि ना माल काम ना औलाद काम, वो तो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा, कहां जाएगा? जहन्नुम में जाएगा। और जन्नत की खुशखबरी किसको सुनाई गई? वो जो मोटे मोटे होंठों वाला, वो जिसकी काली रंगत, वो जो हफ्शा से आए थे, वो जो के आजाद भी नहीं थे, गुलाम थे, उनके बारे में क्या कहा गया? ऐ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि ये मैंने जन्नत में जो अपने कदमों की आवाज सुनी है। जिब्राइल अलैहि सलाम से पूछा ये किसके कदमों की आवाज है? कहा कि ये बिलाल हबशी रजी अल्लाह के कदमों की आवाज है। तो मेरी बहनों, जन्नत मिलती है ईमान और अमन सहले के नतीजे में। तो क्या करें? जब कुरान की तिलावत करें, जब कुरान पढ़ें, तर्जुमे की क्लासेस, तफसीर की क्लासेस, तजवीद की क्लासेस, तो अल्लाह ताला से मदद मांगते रहें। कुरान पढ़ने वालों को और ज्यादा मोहतात होना चाहिए, क्योंकि कुरान पढ़कर अगर वो बह गए, कुरान पढ़कर अगर उन्होंने कोई गलत अमल किया, तो इसका ये मतलब है कि उनको देखकर बहुत से लोग बहकेंगे कि इसने तो कुरान पढ़ा हुआ है, इसने तो आलमा का कोर्स किया हुआ है, ये तो कुरान वाली है। ऐसा ना हो कि कुरान पढ़े और अल्लाह से मदद ना मांगे और फिर शैतान जो है वो हदायत के सरचश्मे के फैज से महरूम कर दे, और फिर लोगों जिसने कुरान से हदायत ना पाई तो वो कहां से हदायत पाएगा? जिसने कुरान मजीद से गुमराही अखज कर ली, फिर दुनिया की कोई चीज उसे जो है गुमराहियों के चक्कर से निकाल न सकेगी। ये मतलब है फस्ताइज बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तो बेहतरीन बनने के लिए जरूरी है कि शैतान से बचा जाए, उस हस्ती की पनाह में आया जाए जो कि नुकसान से बचाती है, जो नुकसानदेह चीजों से बचाती है, जो वसवसों से बचाती है, और वो अल्लाह है। और अल्लाह की जब पनाह में इंसान आ जाता है तो शैतान बेबस हो जाता है कि वो इंसान को शैतान जो है वो सही रहनुमाई से रोक सके। और इंतहाई कोशिश शैतान की क्या होती है? वो ये चाहता है कि इंसान जो है वो हदायत ना हासिल करे, वो हदायत से दूर हो जाए। सूरत ताहा आयत 124, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, फमन आरदा अन जिक्री फइन्नहु लही मईशतन दनका, तो जिसने मेरी याद से एराज बरता इसका गुजरान तंगी वाला होगा, है ना। तो वो लोग जो अल्लाह को याद नहीं करते, और अल्लाह की याद जिक्र क्या है, कुरान में तो अल्लाह अल्लाह की याद है ना, एक जिक्र है, तो जो इससे दूर होगा तो फिर वो शख्स जो है वो क्या है, फिर उसका गुजारा जो है वो मुश्किल है। तो सारी उम्मत को मुखातिब करके ये कहा जा रहा है कि क्या करें, खास तौर पे यहाँ पे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, लेकिन आपको कहना, तमाम उम्मत को कहना है कि आपके उसवे पर ही हमें चलना है कि अल्लाह, अल्लाह ताला क्या बताते हैं कि अल्लाह हम तेरी पनाह में आते हैं, तू हमें शैतान से, शैतान शतन से है ना, वो शैतान जो के नेकी से महरूम है, वो शैतान जो के रहमत से महरूम है, भलाई से महरूम है, वो जो के रजीम है, रजम है ना, वो के जिस पर जो है वो लान तान होती रहती है। तो असल में शैतान किन लोगों को जो है वो चक्कर देता है और फरेब देता है, वो लोग जो के अकीदे के कमजोर होते हैं। शैतान किन को जो है वो शिरक की राहों पे डालता है और इंतकाम लेता है, किन लोगों से लेता है इंतकाम, जो के जो है वो मुखलस नहीं है। आपने पीछे पढ़ा था ना कि मुखलसीन जो है उन पर शैतान का कोई दौ नहीं चल सकता, शैतान उन पर कोई वार नहीं कर सकता। तो कहा कि तुम जो है वो शैतान से जो है वो अपने आप को बचाओ। और फिर आप देखिए कि अगर हम जब भी हम कोई बुरा काम करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा ना दिल मुतासिर होता है, क्योंकि जबान जो है उस पर बाद में बात आती है, दिल मुतासिर होता है ना, बुराई का जो मंबा है वो दिल है। इसीलिए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि खबरदार, दिल जो है गोश्त का जो लोथड़ा है, अगर ये ठीक रहा तो सारे जिस्म के अजाब भी ठीक रहते हैं, ये बुरा हो जाता है तो फिर सारे जिस्म के अजाब भी बुराई करने लगते हैं। तो ये जो औज़ु बिल्लाह, तावुज़ और कुरान की तिलावत है, कुरान को पढ़ना है, तो फिर ऐसी कुव्वत और ताकत मिलती है कि इंसान वली बन जाता है। फिर क्या है कि फिर शैतान जो है वो उसको शिकस्त नहीं दे सकता। तो यहां पे यही बात कही, फरमाया इन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन, नहीं है उसके लिए कोई तसल्लुत। सुल्तान इक्तदार के मानी में इस्तेमाल होता है, जोर के मानी में इस्तेमाल होता है, कि जो कुरान पढ़ते हैं और औज़ु बिल्लाह पढ़ते रहते हैं तो शैतान उन पर कोई जोर नहीं कर सकता। शैतान के दाव, वार, वसवसे, चालें, फरेब उसको सिराते मुस्तकीम से हटा नहीं सकते। क्यों? इन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन अलल्लज़ीना आमनु वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, के शैतान का जोर उन लोगों पर नहीं चलता। किन लोगों पर? नंबर वन, वो लोग जो ईमान लाने वाले हैं, और नंबर दो, वो अपने रब पर जो तवक्कुल करने वाले हैं, जो अपने रब पर भरोसा करने वाले हैं। ईमान और तवक्कुल अल्लाह, ये वो बुनियादी खूबियां हैं कि जिसकी वजह से शैतान जो है वो बेबस हो जाता है और इन लोगों पर वार नहीं कर सकता। ठीक है, तो जिन लोगों ने जो ईमान ले आए, ईमानियात में सब चीजें आती है, अल्लाह पर ईमान, आखरत, कुरान मजीद, फरिश्ते, तकदीर, किताब, रसूल, सब पर ईमान, बेहतरीन ईमान, मुफसल भी और मुकम्मल ईमान। और दूसरा क्या है कि फिर अल्लाह पर वैसा भरोसा किया जाए जैसा करने का हक है, कि सख्त से सख्त हालात में भी इंसान जो है वो ईमान को जो है वो छोड़ने वाला ना बने, तवक्कुल करना अल्लाह पर। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं, इन्नमा सुल्तानहु अलल्लज़ीना यतवल्लौनहु, बेशक उसका जोर चलता है। किसका जोर चलता है? हु की जमीर किसके लिए है? शैतान के लिए। शैतान का जोर उन लोगों पर चलता है, वो लोग, यतवल्लौनहु, जो उसको अपना दोस्त बना लेते हैं, जो कुछ बातें अल्लाह की मानना चाहते हैं, कुछ अपनी ख्वाहिशात, अपनी मर्जी, शैतान को। और शैतान इंसान के रूप में भी है और जिन्नों के रूप में भी है। वल्लज़ीना हुम बिही मुशरिकून, और वो क्या करते हैं कि फिर ये वो लोग हैं जो शैतान को अपना जब दोस्त बना लेते हैं, तो वल्लदीना हुम बेही, यहाँ फिर एक ख्वाहिश अफवी है, फिर ये लोग जो हैं वो बेही यानी इस शैतान के बहकाने की वजह से क्या करने लगते हैं, शिर्क करते हैं, मुशरिकून शिर्क करते हैं। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जब ये लोग क्या करते हैं कि शैतान से दोस्ती करते हैं, तो नतीजा क्या निकलता है कि फिर शैतान जो है वो इनको जो है वो बहकाता है। ये बड़ी खूबसूरत आयतें हैं, ये दोनों आयतें जो ये बताती हैं कि वली और दोस्त अल्लाह को बनाना चाहिए और नेक लोगों को बनाना चाहिए, और कुरान से दोस्ती करनी चाहिए, सोबते सवाले अख्तियार करनी चाहिए, ईमान और तवक्कुल अल्लाह बहुत जरूरी है, तो इंसान जो है वो शैतानी वारों से बच सकता है। वरना फिर क्या है कि शैतान जो है वो बहकाता है, यहाँ तक कि इंसान कुरान पढ़ता है और फिर हदायत से महरूम होता है। अल्लाह ताला हमें उन बदकिस्मत लोगों में शामिल ना करे, क्योंकि अल्लाह को जो लोग सख्त नापसंद हैं वो कौन है जो कि शिर्क करते हैं, और शैतान का कहना मानना क्या है जो है वो शिर्क करना है, अल्लाह की जात सिफात इख्तियारात और हुकूक में जो है वो दूसरों को शामिल करना है। फिर अल्लाह ताला क्या कहते हैं, ये लोग जो शिर्क करते हैं इसकी असल वजह क्या है, ये बेइल्म है। वाइजा बदलना आयतम मकान आया, और जब हम बदल देते हैं एक आयत की जगह दूसरी आयत, हम एक आयत की जगह दूसरी आयत नाजिल करते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? ये नासिख और मनसूख आप पहले पढ़ चुके हैं, अल्लाह ऐसा क्यों करता है? वल्लाहु आलमु बिमा युनज़्ज़िल, अल्लाह ज्यादा जानता है कि वो क्या नाजिल करे। लोगों को थोड़ी पता है, लोग तो बेइल्म हैं, वो नसख की हिकमतें और मसलतें नहीं जानते। आप सूरत अल बकरा आयत 106 में पढ़ ही चुकी हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले कुछ आयतें नाजिल की, फिर उनकी जगह अल्लाह ताला दूसरी आयतें जो ले आया, तो ऐसा करने का मकसद क्या था, ऐसा करने की जरूरत क्या थी, है ना? इस सिलसिले में आप मिसालें याद रखें कि मसलन जो है वो शराब ही का हुक्म है, पहले क्या कहा गया कि ये शराब जो है इसमें फायदे भी हैं लेकिन नुकसान फायदों की निस्बत जो है वो ज्यादा है। फिर क्या कहा कि जब नमाज पढ़ने लगो तो शराब ना पिया करो। फिर एक फाइनल आयत नाजिल हो गई, और वो क्या थी कि लोगों तुम पर शराब हराम कर दी गई। सूरत माईदा में आप जो है ये पढ़ ही चुकी हैं। तो इससे जो है क्या बात पता चलती है कि अल्लाह एक हुक्म के बाद जब दूसरा हुक्म नाजिल करते हैं, एक आयत की बदले एक आयत की जगह दूसरी आयत जो नाजिल करते हैं, तो इसकी क्या वजह है? वल्लाहु आलमु, अल्लाह ज्यादा जानता है, उसको बेहतर पता है, बिमा युनज़िलु, के वो क्या नाजिल करे। मसलन आप देखें कि आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में सगे बहन भाइयों का आपस में निकाह जायज था, है ना? बाद में उसको हराम कर दिया गया। तो इसी तरह जो है वो नासिख और मनसूख के बारे में हमें कुछ ऐसी आयतें मिलती हैं कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक और आयत है जिसको बाद में नहीं रखा, उसको क्योंकि वो मनसूख कर दिया गया था, वो क्या आयत थी कि अश्शैख व शैखा इज़ा ज़नाया फ़रजुमूहुमा अलबत्ता। ये मौता इमाम मालिक की रवायत है कि शादीशुदा मर्द और औरत अगर जिना का इर्तकाब करें तो यकीनन उन्हें संसार कर दिया जाएगा। तो इस आयत की जो है वो तिलावत भी हम नहीं करते, लेकिन हुक्म बाकी है। बाज ये नसख और मनसूख का कानून कैसा है कि बाज जगह आयत हम पढ़ते हैं लेकिन अब उस पर अमल नहीं करते, बाज जगह ये है कि आयत बाकी नहीं है लेकिन हुक्म बाकी है ना? तो क्यों, आप पढ़ी चुकी हैं कि मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसीहा, कि या तो हम उसको भुला देते हैं या फिर ये कि उससे भी अच्छी एक और हुक्म जो है वो ले आते हैं। आप पहले तफसीलन इस बात को पढ़ी चुके हैं, तो यहाँ पे भी यही बात जो है वो कही जा रही है कि लोगों को नहीं पता, अल्लाह को ज्यादा पता है। और लोग ये कहते हैं कि ये एक आयत की जगह दूसरी आयत क्यों नाजिल हो गई, और अल्लाह बता रहा है कि अल्लाह बेहतर जानता है कि वो क्या नाजिल करे। पालू, तो ये लोग कहते हैं इन नमा अंता मुफ्तर, कि तुम तो ये कुरान खुद घड़ के लाते हो कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुरान तेरा अपना घड़ा हुआ है। इसकी क्या वजह थी कि वो लोग ऐसा क्यों करते थे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये इल्जाम लगाते थे? उनको ये भी लगता था कि एक ही दफा फिर कुरान क्यों नहीं इकट्ठा नाजिल हो गया, थोड़ा थोड़ा करके क्यों आता है, और फिर एक चीज के बारे में कभी एक हुक्म होता है फिर दूसरा हुक्म क्यों नाजिल हो जाता है ना। तो असल में यहाँ ये आयत जो है ये बता रही है कि अल्लाह ताला ने जो है वो तदरीज है दीन पर अमल करने में, दर्जा बंदी है, तदरीज है कि वो लोग जो शराब पीने वाले थे उसके आदी थे, अगर एकदम कहा जाता शराब ना पियो तो फिर वो जो है क्या करते, वो शराब ना छोड़ते। तो पहले उनके जहन में इतनी बात डाली गई कि शराब अच्छी चीज नहीं है, इसमें फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा है। फिर जो लोग सोचने लगे कि अच्छा इसमें नुकसान ज्यादा है, फिर तो कुछ दिनों में यह आयत नाजिल हो गई कि नमाज पढ़ते वक्त जो है नशे में नहीं होना चाहिए, तुम सुकारा नशे की हालत में नहीं होना चाहिए। और हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह ने ये चाहते थे कि इसको अल्लाह खत्म ही क्यों नहीं कर देता, शराब को हराम ही क्यों नहीं कर देता, और यहां तक कि फिर वो आयतें नाजिल हो गई है ना कि शराब जो है लोगों तुम पर हराम कर दी गई। तो इसमें क्या है, एक हिकमत है कि अल्लाह ताला जो है वो अपनी मर्जी से जितनी जितनी चीज की जरूरत होती है किस तरह से उसको जो है वो दुनिया में नाफिज करे। तो ये हिकमतें अल्लाह ज्यादा जानते हैं, लेकिन अहले मक्का क्या कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये मुफ्तर है, इन्नमा अंता मुफ्तर। अल्लाह ताला कहते हैं बल अक्सर हम ला यालमून, और अक्सर लोग इस बात को जो है वो जानते नहीं है। तो उनका बाज़ुकात वो ये कहते थे ना कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रूमी कोई गुलाम है उससे सीख लेते हैं, और किसी और अजमी से सीख कर ले आते हैं, और किसी से सीख कर आते हैं और फिर बताते हैं। तो यहाँ पे इसका इनकार किया जा रहा है कि ये जुल्म करते हैं जो ये कहते हैं कि तुम ये कुरान खुद घड़ते हो। असल बात यह है कि इनको हकीकत का पता नहीं। कुल आप कह दीजिए नज़लहू, इसको नाजिल किया है, यानी इस कुरान को नाजिल किया है रूहुल कुदुसी मिन रब्बिका बिलहक, रूहुल कुदुस ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जो है वो तेरे रब की तरफ से, मिन रब्बिका तेरे रब की तरफ से, इसे तो रूहुल कुदुस ने मेरे रब की तरफ से जो है वो नाजिल किया है बिलहक की हक के साथ, लियुसब्बिता ताकि जो है वो पुख्ता कर दे, ताकि पुख्ता कर दे अल्लाजीना उन लोगों को, आमनू जो ईमान लाए हैं, वाहुदन और उन्हें हदायत मिले, व बुशरा और खुशखबरी हो, लिल मुस्लिमीन फरमा बरदारी इख्तियार करने वालों को। अब आप देखें कि नज़ला, नज़ला जो होता है ना इसके मानी होते हैं कि किसी चीज को स्टेप बाय स्टेप देना। ये भी हो सकता था कि अनज़ला आ जाता। तो अब यहां पे नज़ला का सीगा इस्तेमाल करके ये बात बताई जा रही है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए दर्जा बदर्जा बतदरीज जरूरत के मुताबिक लोगों की नफ्सियात, लोगों के हालात, उनकी जरूरत के मुताबिक अल्लाह ताला ने उसको जो है कुरान मजीद को नाजिल किया है। और नाजिल कैसे किया है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम रूहुल कुदुस जैसे पाकीजा रूह जो है वो इसको लेकर आए, और कैसे, हक सच्चाई के साथ, और कहां से लाए, रब्बी का रब के पास से लाए, मेरे रब के पास से लाए। इसी बात को सूरत अश्शुरा आयत 192 में फरमाया नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला कल्बिक, ये इसे रूहुल अमीन जिब्राइल ने तेरे दिल पर उतारा है। तो नासिख और मनसूख और कुरान का पूरा इल्म जो है वो क्या है, अल्लाह ताला ने उसको नाजिल किया है, और इसलिए नाजिल किया है ये हक है ताकि ईमान लाने वालों का ईमान पुख्ता हो, लियुसब्बिता साबित कदम हो, उनका ईमान पुख्ता हो और उनके अंदर मजबूती पैदा हो। दूसरी वजह क्या है, उन्हें हदायत मिले, रहनुमाई मिले। तीसरी वजह क्या है कि उनके लिए खुशखबरी हो। तो आप देख लें कि मोमिन का दिल जो है वो जरखेज जमीन की तरह होता है, मोमिन का दिल शफाफ होता है, पाक होता है, कुरान की बरकत से जब दिल मुनव्वर होता है तो क्या होता है कि वहां से जो है वो दुनिया में भी जो है अच्छा किरदार मोमिन का पैदा होता है और आखरत में भी अच्छी खुशखबरी है उसके लिए। और जो काफिर होते हैं उनका दिल जमीने शोर की तरह होता है, बंजर जमीन और सीम और थोर वाली जमीन के जिसमें कोई भलाई नहीं होती। कुरान सुनकर भी वो लोग बेअसर रहते हैं। तो ये दरअसल कुरान की यहाँ पर जो है वो खूबियां बताई जा रही हैं, कुरान की फजीलत बताई जा रही है कि कुरान मजीद जो है जो जो इंसान पढ़ता जाता है उसको सबर आता है, उसको ईमान आता है, वो मुसीबतों में साबित कदम रहता है। और जो घड़ने वाले हैं ना, असल में जो रसूल अल्लाह पर मुफ्तर का इफ्तरा का इल्जाम लगाने वाले हैं, वो खुद ही झूठे हैं। तो मुसलमानों के लिए तो कुरान जब भी आया, कुरान की आयतें जब भी पढ़ी, तो उनके लिए खुशखबरी है, उनके लिए मजीद रहनुमाई है। और आप देखें कि जब भी तकलीफ में है, आप परेशानी में है, मुसीबत में है, आप कुरान मजीद को खोल कर पढ़ना शुरू करें, आपको रहनुमाई मिलेगी, आपको एक सुकून मिलेगा, आपको एक इत्मीनान की सी कैफियत जो है वो हासिल होगी। कहीं जन्नत की मुसीबतों पर खुशखबरियां पता चलती हैं, कहीं अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं तो आजमाऊंगा ही, कहीं अल्लाह ताला कहते हैं कि दुनिया की जिंदगी तो है ही खेल और तमाशा, तो तुम क्यों दुनिया की छोटी छोटी मुसीबतों के ऊपर परेशान होते हो। तो इंसान फिर बड़ा दिल कर लेता है। और जब आप क्लास में आते हैं, आप क्या महसूस करते हैं? एक ताकत मिलती है ना, ईमान नसीब होता है। और जो भी इधर उधर की बातें और इधर के ख्यालात और वसवसे होते हैं, तो कुरान मजीद उन सबको जो है वो वॉश कर देता है। जैसे गाड़ी नहीं कहीं जाके धुलवा ली जाए, तो दिल आके जैसे धुल जाता है, दिमाग पे नूर आ जाता है। वलकद नअलमु अन्नहुम यकुलूना इन्नमा युअल्लिमुहु बशर। तो वो लोग क्या कहते थे कि तहकीक हम जानते हैं, वलकद नअलमु कहते थे हमें मालूम है। कौन कह रहा है कि हमें ये मालूम है? अल्लाह ताला कह रहे हैं वलकद नअलमु, हम ये जानते हैं, हमें खूब पता है कि अन्नहुम यकुलूना, के वो ये कहते हैं। कौन ये कहते हैं? अहले मक्का। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें खूब अच्छी तरह पता है कि अहले मक्का ये कहते हैं इन्नमा युअल्लिमुहु बशर, कि इस शख्स को एक आदमी सिखाता पढ़ाता है। लिसानुल्लज़ी युल्हिदूना इलैही, हालांकि इनका इशारा जिस आदमी की तरफ है, युल्हिदूना इलैही, इसके क्या मानी है कि वो शख्स जो है जिसकी तरफ ये लोग निस्बत कर रहे हैं, जिसकी तरफ इनका इशारा है, जिसकी तरफ ये मुड़ रहे हैं, वो शख्स कैसा है? आजमीउन, वो अजमी है। वहाजा लिसानुन, और ये जबान है, अरबी मुबीन, साफ अरबी जबान, कि इनका इशारा जिस अजमी शख्स की तरफ है, वो शख्स तो अजमी है, उसकी जबान अजमी है, और ये साफ जबान अरबी जबान है। तो अब किसी अजमी से कुरान कैसे सीखा जा सकता है? कुफारे मक्का मुतद्दद अजमी गुलामों का नाम लेते थे, जो तुरात और इंजील की जबान से वाकिफ थे, उसकी तालीम से वाकिफ थे। और काफिरों ने अगर कहीं देखा कि आप किसी गुलाम को दीन की दावत देने गए हैं, तो उसके बाद मशहूर कर देते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलां जो कौम का वाकया था, फलां उम्मत का वाकया, फलां कहानी जो है ना, फलां अजमी गुलाम से सीख ली है। तो अल्लाह ताला ने इस बात का जवाब दिया है कि ये अजमी शख्स जो है वो कुरान जैसा कलाम कैसे सिखा सकता है, जबकि वो खुद ठीक तरह अरबी बोल भी नहीं सकता, चंद टूटे फूटे बोल वो बोलता है और अपना काम चलाता है। युल्हिदूना इलैही, कि वो उसकी तरफ इशारा करते हैं, आजमी उनके वो अजमी है, वो शख्स ऐसा है कि जिसकी जबान अरबी नहीं है। और वहाजा लिसान उन अरबी मुबीन, और ये जो है वो वाजे अरबी जबान है। और असल बात क्या है कि अजमी शख्स जो आलिम भी क्यों ना हो, वो ऐसा कुरान तो पेश नहीं कर सकता ना। फरमाया इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बि आयतिल्लाह, ये वो लोग हैं जो कि अल्लाह की आयात पर ईमान ही नहीं लाते। ला यहदीहुमुल्लाहु, और अल्लाह भी इनको कभी सही बात की तरफ आने की हदायत नहीं देगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है कि जब ये लोग जो अल्लाह की आयात पर ईमान नहीं लाते, अल्लाह की आयात को मानते नहीं हैं, तो क्या है कि अल्लाह इनकी हदायत की तरफ रहनुमाई भी नहीं करता, और दूसरी बात यह है कि इनके लिए दर्दनाक अजाब है। इनके लिए क्यों दर्दनाक अजाब है? इसलिए कि ये नबी पर इल्जाम लगाते हैं, झूठा कहते हैं नबी को, कुरान को झुठलाते हैं। इन्नमा यफ्तरिल कज़िबल्लज़ीना ला यूमिनूना बिआयातिल्लाह। और अल्लाह ताला कहते हैं कि इसके सिवा कुछ भी नहीं, यफ्तरिल कज़िबा, घड़ते हैं झूठ, घड़ रहे हैं झूठ। अल्लज़ीना, वो लोग, झूठ तो वो लोग घड़ते हैं जो ये कहते हैं, जो ये करते हैं क्या, ला यूमिनूना बिआयातिल्लाह, कि वो अल्लाह की आयात पर ईमान नहीं लाते। ये है झूठ घड़ना कि अल्लाह की आयात को तस्लीम ही ना किया जाए। फौलाइका हुमुल काज़िबून, और यही लोग जो हैं वो हकीकत में झूठे हैं। अब कुरैश को ये खूब पता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना जिंदगी भर कभी झूठ बोला, ना झूठा इल्जाम किसी पर लगाया। तो क्या वही शख्स अल्लाह के जिम्मे झूठ लगा सकता था कि अल्लाह ने मुझे ये कुरान की दौलत दी है ना, ये कलाम मुझ पर नाजिल हुआ है? तो ऐसी गलत बात प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ कैसे मनसूब कर सकते थे? और आपने वो हदीस भी सुनी होगी ना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन बुजदिल हो सकता है, बखील हो सकता है, मगर झूठा नहीं हो सकता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर झूठ कैसे बोल सकते थे? तो अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं, तरदीद कर रहे हैं काफरों की, कह रहे हैं कुरैश खुद मुफ्तरी हैं, खुद झूठ घड़ने वाले हैं, हमारा पैगंबर झूठा नहीं है। कुरान क्या है? मुनज़्ज़ल मिनल्लाह, अल्लाह का नाजिल करदा कलाम है। फिर इसके बाद फरमाया कि मन कफर बिल्लाह मिन बाद ईमान ही, कि जिस जो शख्स कुफर करे अल्लाह का इनकार कर दे अगर कोई ईमान लाने के बाद। अब कोई ऐसा शख्स है ईमान लाया और फिर वो उसने अल्लाह का इनकार कर दिया, उसने कुफर कर लिया, क्यों? इल्ला मन उकरिहा, अगर वो मजबूर किया गया हो। ईमान लाने के बाद कुफर करना जायज नहीं है, मुर्तद की सजा तो कत्ल है ना। तो फिर कब ईमान लाने के बाद इंसान इनकार कर सकता है, कब, कौन सी हालत में? इल्ला मन उकरिहा, जब वो मजबूर कर दिया गया हो। वक़ल्बुहू मुतमइन्नुन बिल ईमान, और उसका दिल इस्लाम पर, ईमान पर मुतमइन हो। दिल में ईमान है, ईमान गड़ा हुआ है, जमा हुआ है, पहाड़ की तरह है उसका दिल ईमान में मजबूती के लिहाज से, लेकिन जाहिरी हालात ऐसे हो गए कि मजबूरी से उसको कलमाए कुफर कहना पड़ गया। वलकिन, और लेकिन, मन शराहा, के जो कोई जो है वो शख्स मन शराहा बिल कुफरी सदरन, कि जिसको कुफर पर शरह सदर हासिल हो गई, मन शराहा जो राजी हो गया बिल कुफरी कुफर पर, सदरन उसका सीना, فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ, تو اس پر اللہ کا غضب ہے, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ایسے سب لوگوں کے لیے جو ہے وہ بڑا عذاب ہے۔ یہ جو آیت ہے اصل میں اس میں ان مسلمانوں پر بات کی گئی ہے جن پر اس وقت بڑے ہی سخت ظلم توڑے جا رہے تھے, اذیتیں دے دے کر انہیں کفر پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے سورت نحل بھی آخری دور کی, جو مکی دور میں آخری سورتیں جو نازل ہوئی انہی میں سے ہے۔ اب ایسے حالات میں کہ مسلمانوں کو جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنا پڑے اور دل جو ہے وہ ایمان سے مالا مال ہو اور عقیدہ کفر سے محفوظ ہو, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ کہ اگر دل میں ایمان ہے اور کلمہ پڑھ دیا کفر کا, وہ باتیں کہہ دی جو کافر چاہتے ہیں, تو جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ ان کو پھر معاف کر دے گا, کیونکہ دل جو ہے وہ کیا ہے, مطمئن بال ایمان, ایمان پر مطمئن ہے۔ ابھی میں نے جو آپ کو جو ہے وہ واقعہ سنایا صحابی کا, تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے رخصت کی بجائے عزیمت کی رائے اختیار کی, اور وہ جو جل بھی گئے انہوں نے بھی, ہے نا۔ تو اصل بات کیا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دینا چاہیے, اس کی رخصت ہے, اس کی اجازت ہے, اس پر اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے نہیں۔ ورنہ مقام عظیمت یہی ہے کہ ہاں آدمی کا جسم ٹکا بوٹی کر ڈالا جائے, بہرحال وہ کلمہ حق ہی کا اعلان کرتا رہے۔ تو ہمیں دونوں قسم کی مثالیں رسول اللہ کے زمانے میں ملتی ہیں کہ ایک طرف خباب بن عرت رضی اللہ عنہ تھے, آگ کے انگاروں پر ان کو لٹایا گیا, ہے نا, उनकी चर्बी पिघल कर आग को बुझाती थी। उम्र फारूक रजी अल्लाह का जमाना था, उन्होंने अपनी कमर जो है उसका कपड़ा हटाकर दिखाया, तो जब कमर आपकी देखी गई तो कमर पर ना सफेद सफेद निशान थे। वो किसके निशान थे? कि जलने के बाद जब चर्बी पिघली तो उसके बर्फ की तरह के सफेद निशान उनकी कमर पर थे, वो उनकी अजीमत के निशान थे। लेकिन इस सख्ती के बावजूद वो ईमान पर जमे रहे। बिलाल हबशी रजी अल्लाह को देख लें, लोहे की जिरा पहना कर चिलचिलाती धूप में उनको खड़ा किया जाता था और तपती हुई रेत पर लिटाकर उनको घसीटा जाता था। मक्का की गलियां, चश्मे फलक ये नजारा देखता था। आज भी वो इसकी गवाही देता है। वो तो क्या कहते थे? अहद अहद। फिर बच्चों को उनके पीछे लगा दिया जाता था, है ना? अगला दीवाना मजनू। तो ये थे बिलाल हबशी, लेकिन उन्होंने कलमाए कुफर कहना जो है वो गवारा ना किया, अहद अहद ही कहते रहे। इसी तरह हुबैब बिन जैद बिन आसिम रजी अल्लाह हो, इनके बदन का एक एक हिस्सा, एक एक उजू जो था, मुसैलमा कजाब के हुक्म से काटा जाता था। फिर मुतालबा किया जाता था, कि इनको कहा जाता था कि ए हबीब, तुम मुसैलमा को नबी मानो, और जब वो इनकार करते थे कि मैं नबी नहीं मानता, तो जिस्म का दूसरा हिस्सा काटा जाता था। हर दफा इनकार पर फिर एक जिस्म का हिस्सा काटा जाता, हत्ता कि इसी हालत में कट कट कर उन्होंने जान दे दी। ये तो थी मैंने आपको अजीमत की मिसालें सुनाई। अब दूसरी तरफ देखें, अमार बिन यासिर हैं रजी अल्लाह अन्हो, इनकी आंखों के सामने इनके वालिद को शहीद किया गया, इनकी वालदा को शहीद कर दिया गया। इतनी अजियतनाक तकलीफ उन्हें दी गई इनके वालदेन को, कि दोनों वालदेन जो थे वो शहीद हो गए। और इसके बाद जो है ये काफिर क्या किया इन्होंने, कि अब आकर हजरत अमार बिन यासिर को पकड़ लिया और कहा कि अब तुझे भी नहीं छोड़ेंगे, और कहा कि एक ही बात है कि तुम्हें हम छोड़ दें, हम तुम्हें उस वक्त तक छोड़ेंगे जब तुम हमसे हम तुमसे जो कुछ कहते जाए तुम वो कहते जाओ। और इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए वो सब कुछ कह दिया जो कुफार उनसे कहलवाना चाहते थे। फिर वो रोते रसूल अल्लाह की खिदमत में आए रोते हुए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह मा तुरिक तु हत्ता सबब तुक, मुझे नहीं छोड़ा गया जब तक कि मैंने तुझे गाली ना दे दी। बस अगर तू आलिहत हूं, और उनके मैंने खुदाओं का जिक्र नहीं किया बेखैर अच्छाई के साथ, मुझे छोड़ा ना गया जब तक कि मैंने आपको बुरा और उनके माबूदों को अच्छा ना कह दिया। हजूर ने पूछा, कैफा तजिदु कलबक, आप अपने दिल की कैसी कैफियत पाते हैं? उन्होंने कहा, मुतमइन्नम बिल ईमान, ईमान पर पूरी तरह मुतमइन। आपने फरमाया, इन आदू फउद, अगर वो इसी तरह का जुल्म करें तो फिर इसी तरह जो है यही बातें फिर से कह देना। तो ये है रुखसत। तो ये आयत जो है वो रुखसत बताती है कि इसकी इजाजत है, इसका ये नहीं मतलब कि यही हुक्म दे दिया गया है। कि हुक्म तो अजीमत ही का है, ईमान नाम ही अजीमत का है। ईमान नाम है कट जाने का, शहीद हो जाने का। ये मेहनतों का सफर है, ये अजीमतों का सफर है। ये बोस्निया का भी एक बड़ा खूबसूरत वाकया बताया जाता है, कि आपको पता है ना, बोस्निया के मुसलमानों पर सर्बों ने जब हमला किया तो वो बहुत ज्यादा जुल्म किया मुसलमानों पे। तो एक औरत जो डॉक्टर डॉक्टर थी और उसका शौहर इंजीनियर था, तो मियां बीवी दोनों मुसलमान थे, चल रहे थे। तो जो है वो जो ईसाई थे, सर्ब ईसाई थे, उन्होंने आकर जो है उनको कहा कि तुम लोग जो है ना तीन उंगलियां खड़ी करो। तो गोया के तीन उंगलियां खड़ी करने का मतलब क्या है? तीन खुदा, यानी सलीब को तुम मानो। तो शोहर ने अपनी बीवी से पूछा कि क्या कहूं ना, दोनों थे शोहर मर्द को कह रहे थे और दोनों ये सड़क के किनारे चल रहे थे। तो बीवी ने जो है ये नहीं कहा कि हाँ तुम जान बचाने के लिए कह दो, और शोहर जो था उसके दिल ने भी गवारा ना किया कि मैं कह दूं कि हाँ तीन खुदा को मैं मानता हूं, या मतलब तीन उंगलियां खड़ी करनी थी ना। तो उसने जब खड़ा ना किया उंगलियों को, तो बीवी के सामने शोहर को गोली मारी और उसने तड़प तड़प कर जान दे दी। आज भी ये मिसालें मिलती हैं। और वो औरत जो मुसलमान जख्मी थे और कैंप में आते थे, उनकी मरहम पट्टी करती थी और लोगों को अपने शोहर का ये वाकया सुनाते थे। तो ये है कि अजीमत के रास्ते पे चलना। और आज हमारा हाल क्या है कि हलाल जो है वो हलाल की बजाय जो है वो हराम पर कनात कर बैठे, दुनिया को महबूब बना लिया, आखरत को भूल बैठे, यानी हलाल और हराम में तमीज नहीं कर पाते, हालांकि मर नहीं रहे होते जान से, लेकिन हलाल हराम की तमीज खो दी, हया और बेहयाई का फर्क मिटा दिया, इस्लाम और कुफर का की तमीज हमने खो दी। तो क्या इसको जो है वो मुसलमान कहते हैं? अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर कोई शख्स जो है वो कहता है कि मैं मजबूर हूं जी, मैंने कलमा कुफर किया, मजबूरी थी, मैंने हराम जो है उसको मुझे इस्तेमाल करना पड़ा, हालांकि वो मजबूर नहीं था, वो मुतमइन था, दिल उसका पूरी तरह मुतमइन था। मजबूर वो होता है जो कराहत के साथ इस्तेमाल करता है और उतनी देर इस्तेमाल करता है। अगर वो शौकिया और कहता चलो अच्छा मौका मिल गया और फिर पेट भर के खाता है और मजे लेता है और कहता है कि चलो जी इसमें तजारत करेंगे, बिजनेस करेंगे, जैसे मसलन घर के ऊपर ही आप देख लें कि इसमें भी वैसे तो उलमा का इख्तलाफ है कि इस तरह सूद पे घर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन चलो अगर माना उलमा की राय से रुख्सत उठा ली जाए, फायदा उठा लिया जाए कि एक घर बन ले सकते हैं, तो घर पे घर लेते चले जाना, इसको कारोबार का जरिया बना लेना, क्या ये जायज है ना? और भी बहुत सी मिसालें आप खुद सोच सकते हैं, आप खुद बता सकते हैं कि फिर ठीक क्या है, गलत क्या है। तो अल्लाह ताला कहते हैं जिसका दिल, जिसने दिल की रजामंदी से कुफर को कबूल कर लिया, इस पर अल्लाह का गजब है और ऐसे सब लोगों के लिए बड़ा अजाब है। अल्लाह को सख्त नापसंद है कि इंसान ऐसा करे, और इंसान ऐसा क्यों करता है? अल्लाह की बजाय दुनिया के कानून को क्यों लेकर चलता है? क्यों इस्लाम पर कुफर को तरजीह देता है? ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ عَلَى, یہاں پر جو ہے نا یہ بدلے جو ہے وہ مقابلے میں ہے, بدلے کے معنی میں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کر لیا, جنہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو محبوب سمجھا, اسے محبت کی, دنیا کے فائدے انہوں نے چاہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ, اور اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا چاہیں, جو اللہ کے مقابلے میں کفر چاہیں, جو اسلام کے مقابلے میں کفر چاہیں, توحید کے مقابلے میں شرک چاہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا یہ قاعدہ ہے, میری یہ سنت ہے, لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ, کہ میں کافروں کو راہ نجات نہیں دکھایا کرتا, میں ان کو ہدایت نہیں دکھاتا جو کہ میری آیات کا انکار کرتے ہیں, جو میری نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم, اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دی ہے. واولئک هم الغافلون, یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں ڈوب چکے ہیں, دل ہیں لیکن ان یہ دل قرآن کے لیے پگھلتے نہیں ہیں, قرآن سے ان میں پانی کے چشمے بہتے نہیں ہیں, ان کے پاس کان تو ہیں, ساری خرافات ساری فضول باتیں سنتے ہیں لیکن قرآن کے لیے بہرے ہو جاتے ہیں, آنکھیں تو ہیں, ان آنکھوں کا استعمال کر کے ساری دنیا سمیٹتے ہیں, دنیا کے فائدے, لیکن ان آنکھوں کا استعمال کر کے حق کو نہیں پہچانتے, تو یہ کیسے غافل لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے تباہ سیلڈ کر دیا ہے ان کے دلوں کو, کانوں کو اور آنکھوں کو, مہر لگا دی ہے. اور میں نے مہر کے معنی آپ کو بتائے تھے نا, کہ جیسے یہ پانچ انگلیاں ہیں اور ہتھیلی ہے, تو ان کو بند کر لیا جائے, نہ اندر کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے اور نہ باہر. تو یہ مطلب ہے کہ دل ان کا بھینچ گیا ہے, زنگ لگ گیا ہے. اور یہ کیسے لوگ ہیں؟ لا جرم انہم فی الآخرات ہم الخاسرون, تو یہ وہ لوگ ہیں, لا جرم کوئی شک نہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ آخرت میں یہ نقصان اٹھانے والے ہیں, ناکام اور نامراد ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.